प्रकाश वाक्य उसका दूसरे अध्याय में थुआतीरा की कलीसिया जो चौथी कलीसिया है 18 पद से लेकर के 29 पद तक कुछ पद पढ़ूंगा मैं और पद पढ़ने बाद आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि दो बातें हैं जो हर कलीसिया के लिए प्रभु कहता है। पहली बात, जिसके सुनने की कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर ने कान हमें इसलिए दिए कि हम सुन सकें। और शायद मैंने कभी पहले बताया होगा, एक बार एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और क्या नाम से मैदान में, और स्टेज बना हुआ था और स्टेज पे प्रचारक जोर जोर से कुछ प्रचार कर रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो क्या हो रहा है, अरे ये तो बहुत भीड़ लगी हुई, ये तमाशा हो रहा है यहाँ पर। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पास नहीं जाऊँगा, मैं दूर से देखूंगा वहाँ क्या हो रहा है, देखूंगा लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। और वो एक पेड़ पर चढ़ गया, उस पेड़ पर चढ़ करके बैठ करके वो देखने लगा और उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि उसने विचार किया था कि मैं केवल देखूंगा पर सुनूंगा नहीं, केवल देखूंगा पर सुनूंगा नहीं। और जब वो ऐसा कर रहा था तो एक मक्खी आई और उसकी मक्खी नाक में बैठ गई, नाक के ऊपर बैठ गई। उसने अपना हाथ आया, मक्खी को भगाया, ऐसे करके भगाया, थोड़ी देर मक्खी भागी, फिर गुनगुना के फिर आके बैठ गई। और बहुत कोशिश करा, कहीं डाल में नाक रगड़ रहा है, कहीं हाथ से करा, अगर वो हाथ करता तो कान उसके खुल जाते। उसने कहा मैं थाना क्या था, मैं देखूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं। लेकिन उस मक्खी ने उसकी नाक में दम कर दिया, और जब कर दिया तो उसने एकदम से गुस्से में आके अपने हाथ उठाया और मक्खी को मारना चाहा। जैसे मक्खी को मारना चाहा, उसके कान में एक आवाज गई, जिसके सुनने के कान हो सुन ले परमेश्वर क्या कहता है। कहने लगा अरे मेरे पास तो कान है, मैं तो सुन सकता हूं लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं, मैंने तो अपने कानों को बंद कर रखा है। तो उन्हें पेड़ से नीचे उतरा और वो भीड़ में गया और तब उसने परमेश्वर के वचन को सुना और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ उसका प्रतिउत्तर देना और जरूरी है। सुनते हैं लेकिन अगर प्रतिउत्तर नहीं है हमारे पास तो वो सुनना अधूरा है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और तब उसके बाद हर कलीसिया के साथ कहता है जो जय पाए उसके साथ मैं करूंगा, जो जय पाए उसके साथ। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया एक विजयी जीवन को व्यतीत कर सके। जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया ये नहीं है, कलीसिया लोग हैं, छत नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग हैं। अर्थात जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो विजय के जीवन को व्यतीत कर सके। कई बार हम विश्वास की बात करते हैं लेकिन विजय जीवन नहीं रहता हमारा, हम पराजित जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा वो जीवन व्यतीत करते हैं और हमेशा हम रोते रोते थके हुए रहते। नहीं, परमेश्वर ने हमें विजय जीवन के लिए बताया है। कठिनाइयां आती हैं, समस्या आती हैं, घटियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने कहा मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। सो आज हम इस चौथी कलीसिया में जाएंगे, थुआतीरा के कलीसिया के दूत को लिख। मैंने बताया था कि दूत का मतलब क्या है, मैसेंजर कह सकते हैं, या उस कलीसिया का जो पासवान है, पास्टर है, उसको कह सकते हैं। कुछ कलीसिया के बारे में मालूम है कौन सी कलीसिया कैसे स्थापित है, लेकिन कुछ कलीसिया के बारे में नहीं मालूम, पर कुछ बातें मालूम चलती हैं जो हम देखेंगे। जैसे थुआतीरा कलीसिया, तब वो कहता है कि उसको लिखा जा रहा है परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें अग्नि ज्वाला और जिसके पैर चमकते पीतल के सदृश है। ये कहता है, कौन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा यहुन्ना से कह रहा है और यहुन्ना उन चीजों को लिख रहा है। यहुन्ना पत्मस टापू में क्यों गया था, हमने देखा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में समझौता करने के लिए मना कर दिया था। उसने प्रकार प्रभु के अलावा मैं किसी सामने नहीं झुकूंगा, सरकार के कोई ऐसे नियम को नहीं मानूंगा जिसमें मेरा विश्वास का समझौता हो, और इसलिए उसको लगभग 90 साल की आयु में ऐसे एकांत में डाल दिया गया, पद्मस टापू में, जो छोटा सा काला पानी के जिसको बोलते हैं वहां का डाल दिया, और वहां पर परमेश्वर ने उसको ये सारे चीजों में भेदों को प्रकट किया, लिखवाया। तो कहता है सबसे पहले ये कौन है, परमेश्वर पुत्र, हम पहले देखते हैं उसने मनुष्य का पुत्र उसका करके टाइटल लिया। और मैंने बताया था कि प्रकाश वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के लिए लगभग 32 टाइटल है, और हम पहले अध्याय में कुछ टाइटल्स को देख चुके हैं, उपनामों को देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो आए हैं उनको हम देख चुके हैं। तो वो कह रहा है क्या है, अग्नि की ज्वाला जिसके पैर चमकते हैं। अग्नि की ज्वाला पवित्रता को प्रकट करता है, किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदी हुई कलीसिया है। प्रेरित काम उसके 20 अध्याय और 28 पद में, मेरे प्रियो जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में आने के लिए हम जब तक प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास ना करें, जब तक उसको हम अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन स्पष्ट बताता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, जकरिया के अंतिम अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, वो कहता है निष्पाप कोई भी नहीं है, सब ने पाप किया है। और इसलिए अगर सब ने पाप किया तो परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप कहेंगे बच्चे कैसे पाप करते हैं? बच्चे पाप करते हैं। तो अगर बच्चा 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का वो भी पापी है, कैसे पापी है? आप उस बच्चे को उतार दीजिए गोदी से, माँ उसको उतार देती है, 3 महीने का शायद 2 महीने का मैं उतार देती है, लेकिन वो दूसरे बच्चे को अपने गोदी में ले लेती है, उस बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है? उसके अंदर कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देती है, रोना है, खिसियाना है, चिड़ना है, चिड़चिड़ा करना है, बोल नहीं सकता है। लेकिन उसके मन में ये स्वभाव है कि मेरी माँ ने मुझे उतार दिया है और दूसरे को अपनी गोदी में ले लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, घुटने घुटने चलता है, मट्टी चाटता है, माँ देख लेती है, जैसे देखती है वो छुपाने लगता है। ये किससे सिखाया? माँ ने नहीं सिखाया, पिता ने नहीं सिखाया, पड़ोसी ने नहीं सिखाया, लेकिन कहाँ से करने छिपने की आदत आ गई? उसके अंदर ये, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर वचन कि हम जन्म से पापी हैं और पाप का स्वभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वो पाप भी उसके अंदर बढ़ता जाता है। तो कोई नहीं कहता कि बच्चा पापी नहीं है, कोई भी नहीं कहता, और इसलिए परमेश्वर वचन सिखाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। परमेश्वर ने प्रेम किया है और प्रेम को अपने पुत्र को भेजने द्वारा उसने प्रदर्शित किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें अपने पापों को पहचानना है और पापों से पश्चाताप करना है और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना है। तब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, उसके राज में शामिल होते हैं और तब हम कलीसिया का भाग है। जरूर हम कलीसिया की स्थानीय कलीसिया की सदस्यता के बारे में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव क्या है। तब आगे चल के कहता है पवित्रता के साथ उठारे को देखता है, पहचानता है, उसके पैर चमकीले पीतल के सदृश हैं। पीतल जो एक ऐसी धातु है जो बहुत ही कार्यों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो इस चीज को करता है कि वो एक न्यायी परमेश्वर है, किस प्रकार से वो न्याय करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला, न्याय वाला, आगे भी देखेंगे, लेकिन वो कह रहा है मैं तेरे काम को, किसको? इस थियोत्रिया की कलीसिया को कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं। ये थियोत्रिया की कलीसिया कहां कब बनी थी, क्या बनी थी? नहीं, बाइबल में और जगह इसका नाम नहीं, लेकिन एक जगह नाम है। जब हम प्रेरित काम उसके 16 अध्याय में आते हैं और 16 अध्याय में एक स्त्री है, प्रेरित काम उसका 16 अध्याय आप जानते हैं, पौलुस किस प्रकार से प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के लिए वो आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो किस प्रकार से वो एक स्थान पर जाता है जहां पर लिदिया के बारे में है। लिदिया इसी स्थान की रहने वाली थी। प्रेरित काम उसका 14 पद, और लिदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री, सुन रही है, ये बाइबल के विद्वानों का कहना मतलब यह है क्योंकि एक व्यापारिन थी, ये वस्त्रों को बनाती थी और वस्त्र बना के जगह जगह के सेल करती थी, बेचती थी, और ये इस नगर से लेके के वहां फिलिपी में गई और फिलिपी में जाकर के वो कर रही थी। और उस समय किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर उसके विश्वास को कहा, वो कह रहा है और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री सुन रही थी, वो बैंगनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। जब उसने उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया तो हमसे ये कहते हुए आग्रह किया, पौलुस वर्णन कर रहा है, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं मानते हो तो आकर मेरे घर में रहो, और उसने हमें विवश कर दिया। तो वहां पर वो पौलुस गया, लेकिन पौलुस ने कलीसिया को स्थापित नहीं करा, लेकिन इस स्त्री ने, लिदिया ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना था, इसके जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तित किया था, इसके जीवन में प्रभु ने काम किया था और इसके द्वारा कलीसिया की आरंभ हुआ था। अब जब पौलुस विजिट करके चला गया है, इसने लोगों को बताना शुरू करा और अब इसने लिदिया ने सुसमाचार वहां लोगों को बांटना शुरू करा और तब थियोत्रिया की कलीसिया वहां पर स्थापित हुई। तो थियोत्रिया की कलीसिया की मुख्य आरंभ करने वाले में इस लिदिया का सबसे बड़ा योगदान था, स्त्री का सबसे बड़ा योगदान था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वो कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उसके इस कलीसिया के बारे में कुछ कुछ सकारात्मक बातें। पहले सकारात्मक वो क्या कह रहा है, मैं तेरे कार्य, प्रेम, विश्वास, सेवा, धैर्य को जानता हूं। पांच चीजें हैं धीरे के कली सब कह रहा है। सबसे पहले मैं तेरे कार्य को जानता हूं, तू भला काम करते हो, तू वो लोग हो जो सचमुच में एक भला काम कर, जिस जैसे नेक सामरी के बारे में सुनते हैं, नेक सामरी ने जो कार्य किया वो भला काम था, एक किस प्रकार से एक आशा की सहायता की। और एक विश्वासी होने के नाते, कलीसिया में होने के नाते, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भले काम में लगे रहें। शायद किसी की सहायता करनी है, किसी आवश्यकता को पूरा करना है, किसी बीमार को विजिट करना है, किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और करना है, कोई गरीब बच्चा है उसकी देखभाल करनी है, उसको शायद बच्चियां हैं, हम गरीब बच्चे को अपने पड़ोस में शायद है, स्कूल जाता, फीस नहीं दे सकते, वो शायद कुछ खर्चा नहीं, हम एक घंटा बैठकर उसको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सूची बना सकते हैं कि किस प्रकार से भला काम आप करें। और मेरे प्रियो, मैं एक विश्वासियों का ये कर्तव्य है, मेरा और आपका, केवल संडे को चर्च ना आए, संडे चर्च आके घर में बैठ जाए पूरे हफ्ते, फिर अच्छा इतवार की इंतजार करें, लेकिन पूरे हफ्ते में कोई ना कोई भला काम आपके जीवन के द्वारा होना है। शायद किसी बीमार को आपने विजिट किया, उसके साथ जाके आपने प्रार्थना करी, शायद किसी साथ एक घंटे बैठ के बाइबल पढ़ी और उसके साथ प्रार्थना करी, उसके विश्वास को मजबूत किया, शायद कोई गरीब है उसको जाके उतने उत्साहित किया। कहीं ना कहीं आप अपने समय को निकाल कर दे सकते हैं, अपने टाइम को देने द्वारा, अपने धन को खर्च करने द्वारा, अपनी व्यवस्था में से अपने समय को निकाल करके कुछ करने द्वारा आप भले काम को कर सकते हैं। यह कह रहा है कि मैं तुम्हारे भले काम को जानता हूं। अगर आज कोई पत्र लिखे, परमेश्वर पत्र लिखे, तो परमेश्वर मेरे और आपके बारे में, सिय्योन की कलीसिया के सदस्य के बारे में, या हमारे जो भाई लोग हैं उनकी कलीसिया के सदस्य के बारे में प्रभु क्या लिखेगा, क्या कहेगा, हाँ फलाना जन एक भला कार्य करने वाला है। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए इस बात के में प्रयत्नशील रहना है कि हमारे जीवन में से किसी न किसी के लिए भलाई उत्पन्न हो सके, भलाई उत्पन्न। मैं कई बार बाहर जाता हूं और कलीसियाओं को प्रोत्साहित करता हूं। मेरे प्रियो, हम एक व्यक्ति अगर किसी एक गरीब बच्चों को भी लेकर के उसके जीवन को बनाना चाहें, हम कितनों के जीवन बना सकते, कितना खर्चा होगा, शायद 400-500 रुपए। हम अपने ऊपर 5,000, 25,000, 30,000, 40,000 खर्चा करते हैं, लेकिन एक गरीब के ऊपर हम 500 भी खर्चा करें और उसको पढ़ाएं, उसके जीवन को बनाएं, उसके साथ अपना समय दें, उसको प्रेम दें, तो आप कितना कहां तक पहुंच सकते हैं। कितने लोगों की हम साक्षियों को सुनते हैं कि किस प्रकार से उनके पास कोई नहीं था, लेकिन उनको किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी नहीं जाते ना, हम बहुत सारे नहीं जाते लोगों के बारे में सुनते हैं कि कितने भले काम में रखते। तो भला काम करना बुरा नहीं, लेकिन हमें और अधिक समर्पित होना। यदि आप कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन यदि नहीं कर रहे तो आप सोचिए बैठ करके कि क्या कर सकते हैं जिससे किसी के जीवन को आप बना सकते हैं, किसी आप सहायता कर सकते हैं, कौन सा भला काम है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको कहता है तू मेरे लिए भले काम करने वाला व्यक्ति है। दूसरा कहता है विश्वास, वो विश्वास जो हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के द्वारा प्राप्त किया है। विश्वास केवल उस समय नहीं, लेकिन विश्वास में हमें जीना है। मैं अक्सर बोलता हूं, जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बोलो, कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे जीवन से प्रदर्शित नहीं है तो क्या है? ठीक है, जिस समय प्रभु में आज समय तो हम बहुत जोश में थे, जैसे जैसे दिन बदलते गए, हम क्या है, हमारे दिन जीवन कहां जा रहा है, हम क्यों नीचे चलते जा रहे हैं, क्या वही विश्वास हमारा, या हम विश्वासों के आश्चर्यकर्मों को देखना चाह रहे हैं, चिन्हों को देखना चाह रहे हैं। लोग कई बार चिन्हों और आश्चर्यकर्म के कारण बहुत परेशान होते हैं और वो और अधिक व्याकुलता में आते हैं। केवल चिन्हों और आश्चर्यकर्मों को देख करके विश्वास करके जीना वो सही नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए है। परमेश्वर हमारे सामने प्रतिदिन चिन्ह दिखाता है, प्रतिदिन कहता है, प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे लिए नहीं होती है, हम मर नहीं मिटे, ये परमेश्वर की करुणा का प्रतिफल है। प्रति भोर को हम रात में सोते हैं, हमें दाएं और बाएं का होश नहीं रहता, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे और आप पर करुणा रखी है। अगर उसे कहें किस प्रकार से मैं प्रतिदिन के जीवन में विश्वास में बढ़ता जा रहा हूं या बढ़ती जा रहा हूं, या मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर डामाडोल हो रहा है क्योंकि मेरी सोच कुछ और लगी हुई है, मैं कुछ और चाह रहा हूं, मैं कुछ और देख रहा हूं, मैं वचन को ध्यान कम दे रहा हूं, दूसरी चीज को, संसार की चीज को ज्यादा दे रहा हूं, शायद किसी ने कुछ कह दिया, शायद किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, हम उस पर ज्यादा हैं, सावधान रहे, सचेत रहे। वो कह रहा है मैं तुम्हारे विश्वास को जानता हूं। तीसरी बात वो कहता है, ना केवल विश्वास लेकिन सेवा, जो तुम सेवा कर रहे हो, कलीसिया ये कली से सेवा कर रही है, किस प्रकार से सेवा कर रही है। मेरे प्रियो, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, मेरे प्रियो हमारे सामने बहुत कुछ है। हम प्रार्थना द्वारा सेवा करते हैं, हम देखते हैं, हमें देखना है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे सेवा को स्मरण करता हूं, तुम्हारे कार्यों को स्मरण करता हूं, तुम्हारे विश्वास को स्मरण करता हूं, तुम्हारी सेवा को स्मरण करता हूं और धैर्य को जानता हूं, तुम्हारे धैर्य को जानता हूं। कार्य प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर से। मेरे प्रियो प्रेम परमेश्वर, जितना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना अधिक हम लोगों से प्रेम करेंगे, जितना अधिक लोगों से प्रेम करेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जिसको तूने देखा है अगर तो उसको क्षमा नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता, तो जिसको तूने नहीं देखा उसे कैसे प्यार करेगा। हमारा प्रेम मनुष्य के साथ सहभागिता, संगति और उनकी चिंता में प्रदर्शित होता है। हम कितना अधिक अपने लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, कितना अधिक उनको उत्साहित करते हैं, कितना दिन उनकी चिंता। कम से कम कुछ ऐसी बात होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, कंधे पे हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करके दो शब्द कहकर उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और प्रतिशीलता कर सकते हैं कि उनका जीवन किसी रीति पीछे ना जाए। यह है कहता प्रेम। तब कहता है मैं धैर्य करूं। क्यों धैर्य करूं? यह ऐसा समय था, करीब इस समय के बारे में बताते हैं, करीब 590 से लेकर के ये 1500 का पीरियड है, 590 से लेकर 1517 तक। उस समय 57, पिछली बार भी हमने देखा था किस प्रकार से कॉलीपार के बारे में, कैसे 86 साल की आयु में आग में से उसको जला दिया गया, किस रीति से पिछली बार देखा था किसी और के बारे में। और इसमें भी हम देखते हैं कितने लोग ऐसे थे जो उस समय 57 शहर थे। कलीसिया पड़ रही है, रोमी शासन का अधिकार है और रोमी शासन ने इससे पहले के समय में कॉन्स्टेंटाइन ने ये आजादी दे दी थी कि तुम बाइबल पढ़ सकते हो, मसीह लोग थोड़ा आजाद होते हैं। लेकिन आजादी देने के साथ साथ उसने ये भी चाहता कि वो जो कुछ भी कह रहा उसको माने, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे दूसरी चीज हो। बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी जो आज रोमन कैथोलिक में देखते हैं, पिछली बार मैंने समझाया था, वो उसी पीरियड में सारी उत्पन्न हुई थी। मेरी से प्रार्थना करना है, चाहे रोजरी करना है, चाहे प्रीस्ट के पास जाके मुर्दों के लिए प्रार्थना करना, मरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, वो वही काल था जो उस काल में शुरू हुआ था। और अब उसका असर यहाँ चल रहा है, परसिक्यूशन है, सतावनी है, कठिनाइयां है, विरोध है, और इतना लोगों को इनको ये कलीसिया विरोध का सामना करिए। लेकिन कह रहा है वो मैं तेरे धैर्य को जानता हूं, इन सबके मध्य में तू परिश्रमी है, तेरा विश्वास मजबूत है, तेरा प्रेम मजबूत है, तेरे कार्य अच्छे हैं, तेरी सेवा अच्छी है और तू धैर्य रख रहा है, इन सबके बीच में भी तू धैर्य रख रहा है। तब उसके बाद किंतु हमेशा वो प्रोत्साहित करता है, कुछ प्रशंसा की बात करता है, कलीसिया की जो भलाई है उनको सामने प्रकट करता है। तुम्हारे अंदर ये अच्छी बातें हैं परंतु कुछ ऐसा तुम्हें जहां सुधरना है। और मेरे प्रियो हम भी अपनी कलीसिया के बारे में कुछ सोच सकते हैं, आप भी अपनी कलीसिया के बारे में कुछ सोचते हैं, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ सोचता हूं, आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं लेकिन उसके बाद अगर किंतु करके परमेश्वर कह रहा ये है तो उन बातों को भी जो हमारी निर्बलता होती है या पाप होते हैं या अपराध होते हैं या गलतियां होती हैं या त्रुटियां होती हैं असफलता होती है उनके बारे में सोचता है। पिछली बार भी हम देख रहे थे कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निरंतर जांचते रहना है, किस प्रकार हमारा जीवन है। कई बार हम अपने जीवन में इतने घमंडी हो जाते हैं, दूसरों को देखने का बहुत अवसर है, दूसरों को हम जांचते हैं लेकिन अपने स्वयं को नहीं जांचते, हमें अपने स्वयं को जांचने का यह अवसर देता है। कह रहा किंतु तेरे विरोध में मुझे ही कहना है, विरोध में कहना है, तू उस स्त्री इजेबेल को अपने मध्य में रहना देता। पुराने नियम में ये स्त्री इजेबेल थी और इसने अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही गलत काम किया था। कौन था उसका पति? राजा अहाब। राजा अहाब ने देखा एक बहुत ही अच्छी भूमि है और वो भूमि मुझे चाहिए, उसने उस व्यक्ति के पास बुलाया ये भूमि मुझे भेज दे। उसने कहा नहीं, ये भूमि को मैं नहीं भेजूंगा, उसका खेत था उसने मैं नहीं भेजूंगा। ये बड़ा निराश बैठा होता, उसकी पत्नी इजेबेल आई और इजेबेल आई और कहने लगी तू क्यों इतना उदास है, क्यों ऐसा बैठा हुआ है। उसने कहा मुझे वो खेत चाहिए था लेकिन उसने देने के लिए मना कर दिया। तो कहने कौन सी बड़ी बात है, मैं कल इसका उपाय करती हूँ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया, उसको ऊंचे पर बैठाया, उस समय था ऊंचे पर बैठा के कोई भी दोष लगा करके किसी को पथराव करके मार दिया था। और तब उसके बाद उसने उस व्यक्ति को ऊंचे पर बैठाया और उसने कहा तूने राजा का निंदा की है। और उस समय ईश निंदा और राजा की निंदा आसानी होती थी, उसको दंड मिल सकता था और ऐसा करने के बाद पथराव करके उस व्यक्ति की मृत्यु करा दी। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस रीति से इस व्यक्ति के लहू को कुत्तों ने चाटा है, कुछ लहू गिर गया था, उसी तरह से तेरे भी लहू को कुत्ते चाटेंगे। बाद में इसने बाध्य किया और इसने बात किया लोगों को कि लोग इसकी स्त्री की उपासना करें, झूठी शिक्षा, उसको राजा से बढ़कर लोग माने। और इसीलिए जब आप राजाओं की पुस्तक में इजबेल और आहाब के बारे में पढ़ते हैं तो आहाब के बारे में कम है, इजबेल के बारे में ज्यादा है। सुनिए, लेकिन कह रहा तू इस स्त्री के पाप को देखिए, परमेश्वर ऐसा कितना दुखी है, तू इतना सब कुछ है लेकिन तेरे बीच में ही है, अर्थात तू स्त्री के कार्य को प्राथमिकता दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं बहनों को यह सलाह देना चाहूंगा परमेश्वर वचन में, जब आप विवाहित हैं और आपके पति हैं, आपको अपने पति का सम्मान करना है और पतियों को गलत सलाह देने से बचना है। दूसरी बात, जब अगर पति बातचीत कर रहा है तो पत्नी को शांत होकर के बोल सकती है, बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर पति से बढ़ चढ़ कर बोल रही है और पति को टाइम ही नहीं मिल पा रहा बोलने का, वो आदत अच्छी नहीं है। हमने एक बार एक पति पत्नी को बुलाया, उनका बहुत काम था सेवा में और वो हमारे साथ सेवा करना चाहते थे, तो हमने उनको बुलाया। मैं अक्सर पहले लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास आइए हम बात करेंगे, एक आध दिन हमारे साथ रहिए। और हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं ऐसे बैठा था, मेरी वाइफ ऐसे बैठी थी, वो पत्नी आई, उसको पति को बैठा चीता मेरे पास, तुरंत यहाँ बैठ गई और पति उसका वहां। फिर उसके बाद मैंने कहा बहन आप उधर बैठी, भाई को यहाँ बैठे थे, उसने बैठा, मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, वो बार बार बोल रही है, वो बेचारा ये उत्तर नहीं दे पा रहा, वो बार बार बोल रही है। मैंने चर्च ये चलाएंगे या आप चलाएंगे, कलीसिया ये चलाएंगे या आप चलाएंगे, सेवा ये करेंगे या आप करेंगे, आपको इनके पीछे रहना है इनके आगे रहना है। हमने मना कर दिया, मैंने कहा आप हमारे साथ काम नहीं कर, सच्ची बात है हमें सीखना है। अब इसका मतलब नहीं कि पति पत्नियों को दबाएं, ये मतलब नहीं है, उनका सम्मान करना है, पत्नियों के पति की जिम्मेदारी उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनकी सुनना है, उनसे प्यार करना है, सब कुछ करना है, उनकी चिंता करना है। मैं उन भाइयों को कई बार चेक करता हूँ, डांटता हूँ अगर वो अपनी पत्नी की चिंता नहीं करते, ये नहीं बाइबल नहीं सिखाती, नहीं सिखाती, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, संदेश जो वचन है ना प्रैक्टिकल है, मसीह लाइफ जो प्रैक्टिकल है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को लेकर चलते हैं। कह रहा है इजबेल के पाप को उन्होंने रखा था, इजबेल अपने आप को सबसे ज्यादा आगे बढ़कर लेके चलती थी, कहता है ये, और ना चलता तब आगे वो कहता है वो जो अपने आप को नबिया कहती, उसको किसी ने नबी नहीं बताया था, लेकिन स्वयं उसने अपने आप कहा मैं जो कहूंगी वो सच्चा होगा, सब कुछ होगा, मैं एक भविष्य निकालने वाले हूं। तो बहुत सारी ऐसी बातें, और वो करके अर्थात इस तरह का पाप उनकी कलीसिया में आ चुका था, और मेरे दासों को व्यभिचार करने मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाने के लिए सिखाती और भटकाती है। ये इजबेल करती है, मेरे लोगों को मूर्तियों के आगे जो जो कुछ भी है उसको खाने के लिए वो कह रहे हैं सिखाती और भटकाती है, ये करती है व्यभिचार के पाप के लिए, ये सारी चीजें मूर्तियों के साथ कहता है इस तरह के। तो मेरे और आपको सावधान रहना है कि मुझे और आपको अपने परिवार में अपनी कलीसिया में इजबेल के पाप से बच के रहना, या व्यक्तिगत जीवन में मुझे और आपको, इसलिए अच्छा है कि घर में जाकर इजबेल के बारे में अध्ययन करें, बहुत जरूरी है। परमेश्वर वचन, उसने अपने पति को नीचे दबाकर सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहा, और मेरे प्रियो यही हुआ कि उसको दंड मिला कि उसको उसके लहू को कुत्तों ने चाटा, जैसे परमेश्वर के नबी ने कहा था, ये दंड मिला मेरे प्रियो, जैसे तूने किया है तेरे सर पर लौटा दिया जाएगा। हमें सावधान रहना है। ये थियोतेरी की कलीसिया, जो कलीसिया बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, उनके पास प्रेम है, उनके पास विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ गड़बड़ है। बहुत सारी चीजें बाहर बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंदर गड़बड़ है। कौन सी चीज है? और मुझे और आपको अपने जीवन को देखना है, अपनी कलीसिया को देखना है, अपनी सेवा को देखना है, और अपने आप को जांचना है, क्योंकि पाप धीरे धीरे करके जीवन में प्रवेश करता है हमारे जीवन में, और धीरे धीरे फिर वो हमें अलग करता जाता है, हमें अलग करता जाता है, और हमें बहुत अधिक सचेत रहना है। ये मूर्ति पूजा का पाप है। तब आगे चल करके वो कहता है मैंने उससे अवसर दिया कि पश्चाताप करे। परमेश्वर हर प्राणी को ये अवसर देता है कि वो पश्चाताप करे। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, और वो अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती, पर नहीं चाहती। मैंने उसे अवसर दिया है, अगर जिस समय पहले उसने गलती करी थी। मेरे प्रियो, दाऊद को क्यों परमेश्वर कहता है अपने वो मेरे मन के अनुसार है? दाऊद को क्यों कहता है? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को सीख लिया था, उसने पाप किया, लेकिन जितनी बार उससे पाप हुआ, खासतौर से तीन समय ऐसे हैं, व्यभिचार का पाप उसने किया, जनता को गिनने का पाप उसने किया, और उसने उरिया को मरवाया, उसका पाप किया। लेकिन उसने जैसे ही उसको मालूम चला, नबी ने आके कुछ कहा, वो पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, और उसने फिर अपने जीवन दूसरी बार वो पाप को दोहराया नहीं। और इसीलिए उसने अपने बेटे को सिखाया था, सुलेमान को, और सुलेमान नीति वचन में लिखता है कि जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। केवल मान लेना काफी नहीं है लेकिन छोड़ देता है। अगर आपको नशे की आदत है, आप कहते हैं हाँ मैं नशा करता हूं, लेकिन जब तक आप नहीं छोड़ते आप पाप मुक्त नहीं है। आपको गाली देने की आदत है, बातों बात अगर ऐसी आदत है तो आपको परमेश्वर से न केवल मांगना है, पश्चाताप करना है, लेकिन उसको छोड़ देना है। परमेश्वर अनुग्रह देगा कि उसको छोड़ने के लिए। यदि आपको कोई और ऐसी आदत है, आपका कोई स्वभाव इस तरह से, आपको वचन से प्रेम नहीं है, तो वो गलत है, अपराध है, आपको पश्चाताप करना है। क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा जीवन दिया है, उसका अपमान अनादर करना तिरस्कार करना है, और इसलिए अगर वो नहीं है तो प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु अपने वचन के प्रति मुझे और अधिक सजग बनाइए। हमें देखना है, कह रहा है मैंने उसको पश्चाताप करने का अवसर दिया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पश्चाताप का अवसर देता है। इसीलिए इब्रानियों का लिखा है, देखो आज ही मन फिराने का दिन है, आज ही पश्चाताप करने का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। इब्रानियों का लिखा कहता है, हमें नहीं मालूम कल हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहता है मैंने उसको बताया है, मैंने उसको सिखाया है, मैंने उसको मौका दिया, लेकिन उसने पश्चाताप करना नहीं चाहा, वो अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। देख मैं उसे रोग सैया पर डालूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उसके समान कार्य से पश्चाताप न करें उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। अब बीमारी कई कारणों से आती है, हमेशा पाप के कारण नहीं आती। किसी भी बीमारी को देखकर, बीमार को देखकर आप ये मत कहिएगा तूने पाप किया इसलिए बीमारी आई, गलत है। अलग अलग रीति से परमेश्वर लोगों को बीमार होने देता है। कई बार हमारी गलती के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, हमारी देखभाल के कारण बीमारी आती है, क्योंकि हमें जैसा देखना चाहिए अपने जीवन को करना चाहिए, संचालित करना चाहिए, मैं नहीं करता, हम नहीं करते। हम कई बार लोगों को समझाते हैं, भैया अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराइए, ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कराइए, जो डॉक्टर ने सलाह दी उसको मानिए, लेकिन कई बार हम वैसा नहीं करने पाते और इसलिए हम उससे ठीक नहीं हो पाते, फिर हम भटकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, बीमारी कई बार पाप के कारण भी आती है, लेकिन हर बीमारी पाप के कारण नहीं है। हर बीमारी अय्यूब पर बीमारी पाप के कारण नहीं आई थी, लेकिन उसके विश्वास की परख थी, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था, परिस्थिति कठिन थी, और इसलिए हमें देखना है, प्रभु से पूछना है। लेकिन यह जरूर है कि चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी बीमारी, वो बीमारी हमें परमेश्वर की निकटता में लाना है, वो बीमारी हमें परमेश्वर की उस बीमारी के द्वारा निकटता में आना है। और प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा किया है, मेरे जीवन में ऐसा किया है, आंटी के जीवन में ऐसा किया है, आप लोग सब जानते हैं, देखा है कि परमेश्वर किस रीति से। तो बीमारी इसलिए ताकि हम परमेश्वर के कार्य को देख सकें, हाँ, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे पाप के कारण बीमारी पर दंड लाता है, वो भी बीमारी का कारण है। वो कह रहा है मैं ऐसा करूंगा, और इसलिए लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है कि हम पश्चाताप करें। अगर मान लीजिए शायद मुझे मालूम नहीं, तब भी हम नम्रता के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं, कह सकते हैं प्रभु आप मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मुझे दिखाइए, और यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा अपराध हुआ है आप मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु प्रेम के साथ क्षमा करने की तत्पर आता है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, वो नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी नाश हो परंतु हर एक को मन फिराव का असर मिले और परमेश्वर के दास में जाए। पहला तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय में कोई वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो यहां पर। तब आगे चल क्यों कहता है कि ऐसा मैं करूंगा, 23 पद, मैं उसके बालकों को महामारी से और पूरी रीति से, हम उसके बारे में देख रहे हैं ये सब कुछ इसका, तब सारी कलीसियाओं को ज्ञात हो जाएगा कि मनो और हृदयों को जांचने वाला मैं ही हूं। मनो और हृदयों को जांचने वाला हूं। पिछली बार हमने कहा कि वचन कहता है कि वो देखता है, वो सबको देखता है। यहां पर वो कहता है मैं हर एक के मन को जांचता हूं। परमेश्वर प्रत्येक के मन को जांचता है, वो जांचता है ये मैंने निर्बलता वश किया है, मैंने अपने स्वभाव के वश किया है, मैंने अपने आदत के वश किया है, या ये मैं कठोर हो गया हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, या सच में मेरे अंदर निर्बलता है। वो जांचता है, वो देखता है। कई बार माता पिता नहीं समझने पाते, कई बार पति पत्नी को नहीं समझने पाता, पत्नी पति को नहीं समझ पाती, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको जानता है। और हमें, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब कुछ देखता, सब कुछ जानता है। उसको मालूम है कि मेरे जीवन में अगर गिरावट है तो क्यों हो रही है, उसको मालूम मेरे जीवन में असफलता तो क्यों हो रही है, उसको मालूम मेरे जीवन में अगर बीमारी तो क्यों है, अगर उसको मालूम मेरे जीवन में यह तो क्यों है, ऐसा है। और वो जानता है, वो चाहता है कि क्या हो सके। कह रहा है मनो और हृदय को जांचने वाला और प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल दूंगा, मैं दूंगा। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है, परमेश्वर मनो को जांचने वाला है। वो मन जो सब प्रकार की बुराई से भरा हुआ है, मरकुस के 7वें अध्याय में मन में तो सबसे अधिक बुराई क्या 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 बुराई वो सारी सूची बताता है। मरकुस का 7 अध्याय 21-22-23 पद, यर्मिया उसका 17 अध्याय 9 पद है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य लोग आवा, परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उस मन को बदल सकता है और बदलता है, ये उसने ही तो उसका काम है, यही तो उसका काम है। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, हमारे चित्त को, हमारी आदतों को बदलता है, परिवर्तित करता है। मैं जानता हूं जब मैं प्रभु में आया था उस समय मेरा स्वभाव कैसा था, कितना अधिक मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ था, चाहे पृष्ठभूमि के कारण चाहे कैसे, लेकिन मैं रोता था, बाद में प्रभु से पश्चाताप करता था, रो रो के मैंने अपनी कलीसिया में कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, रो रो के कि मेरा जीवन इस स्वभाव से हट सके, मेरा जीवन बदल सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ही होने दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, वो ऐसे ही करता है। तब वो कहता है 24 है, पर तू थुआते रखे, शेष लोगों से कहता हूँ जो इस शिक्षा को नहीं मानते और जैसा वे कहते हैं कि शैतान की गहरी बातों को जानते हैं, यद्यपि नहीं जानते, मैं तुम पर और अधिक भार नहीं डालता, फिर भी जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक दृढ़तापूर्वक थामे रहो। कौन से तुम्हारे पास है? विश्वास तुम्हारे पास है, धैर्य तुम्हारे पास है, प्रेम तुम्हारे पास, कार्य तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है जिसकी मैंने प्रशंसा की है, उनको तुम दृढ़ता से थामे रहो चाहे कैसी परिस्थिति हो, और अपने जीवन को किसी प्रकार से समझौते में मत ले जाओ। मसीह जीवन समझौते का जीवन नहीं है, मसीह जीवन अलग होने का जीवन है। किसी प्रकार के इज़बेल के पाप के साथ मत समझौता मत करो, तुम पाप को पहचानो और पाप से अपने आप को अलग करो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने पाप को पहचाना है और पाप से अपने आप को अलग करना है। और परमेश्वर के वचन, मैं अक्सर बोलता हूँ कि परमेश्वर के वचन के लिए, कि परमेश्वर के वचन का कैसे मैं आदर करना है, और मैं हमेशा को कोट करता हूँ कि या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप से अलग रखेगा या पाप आपको परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा। सिटी स्टेट का ये वचन है। सो पाप से अपने आप को एक विश्वास करो, प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें पाप से, हमारी सोच में हो सकते हैं, हमारी मनसा में हो सकते हैं, हमारे क्रियाओं में हो सकते हैं, हमारे कार्यों में हो सकते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पास, तब 26 पद कहता है जो जय पाए और मेरे कार्य को अंत तक करता रहे, विजय पाए। अर्थात विजय किस प्रकार से? जो शत्रु शैतान तुम्हारे पर आक्रमण कर रहा है, और उसका आक्रमण करने के 2-3 तरीके समय थे। एक आक्रमण करने का तरीका था जो परसिक्यूशन था, सतावनी थी। मैंने उन बातों को सामने नहीं लाया, लेकिन 2-3 बातें आपके बताऊंगा मैं। जो परसिक्यूशन सतावनी थी, उससे उनको किस प्रकार से को धैर्य के साथ रहना है, उस समय किस प्रकार से शैतान परीक्षा में डाल रहा है, या किस प्रकार से इज़बेल के पाप में फंसा रहा है, उन सारी चीजों में वो कह रहा है वो कार्य जो तुम्हारे हैं उस पर करते हैं, उससे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन हम जाति जाति के लोगों का, 12 इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। कितना सुंदर वो दिन होगा जब हम प्रभु के दाहिने हाथ में खड़े होंगे और प्रभु कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तू विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत का अधिकार था, और उस समय वो अधिकार देगा कि तू उसका न्याय कर, और वो हमारे न्याय के ऊपर निर्भर रहेगा। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। कुछ पद हैं जिसको हम देख सकते हैं उसके पास क्या कह रहा है, वो जो जय पाए मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे, उसके पास अधिकार है, लोहे का राजदंड है, शासन करेगा भोर के तारे के समान होगा। 1 कुरिन्थियों उसका 6:2-3 पद जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम न्याय करोगे। 2 तीमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 पद, क्यों ऐसे में देखिए, उस समय कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा क्रूर थे और उन्होंने उस समय बाइबल को पढ़ने में प्रतिबंध लगा दिया था। कॉन्स्टेंटाइन ने आजादी दे दी थी, तुम बाइबल पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ मिक्सचर था कि तुम ये भी करो वो भी करो, तुम इसको भी मानो उसको भी मानो, और बहुत सारे लोग इसी रीति से उसमें बह गए, और इसीलिए धीरे धीरे रोमन कैथलिक जो विश्वास है वो जगड़ता रहा, और उसी के बाद ये रोमन कैथलिक विश्वास बढ़ता रहा, जो रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां, संतों की प्रार्थना, ये सब उसी समय आई हैं, जब उसी समय आई हैं जब हम पढ़ते हैं। और तब उसके बाद इसी काल में कुछ अच्छे काम हुए, कुछ ऐसे लोग थे, जॉन विक्लिफ वो थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद किया, प्रिंट नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने अनुवाद किया। आज भी विक्लिफ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे संसार में वो इस बाइबल की सेवा में कार्यरत है, पूरे संसार में उन्हीं के नाम से शुरू हुआ। प्रथम अनुवाद जॉन हैस, उस समय एक और प्रभु के सेवक थे, निडरता के साथ प्रचार करने वाला प्रचारक, इन्हें एक जागृति उत्पन्न की, बाइबल वचन कलीसिया से ऊपर है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर वचन
कलीसिया से उत्पन्न है। पोप क्या कहता था, कलीसिया सब कुछ है, पोप क्या कहता था, कलीसिया सब। और उनकी कलीसिया की कहानी दूसरी थी, बाइबल को उन्होंने नहीं चक्कर देता। लेकिन हंस ने सबसे ज्यादा इस बात पर दृढ़ता दिखाई कि उसने उस समय बाइबल को ऊंचा लाना चाहा। और उसके बाद 1525 में बाइबल का ट्रांसफर हुआ। सो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मैंने कहा कि इन चर्चेज के बारे में जो पढ़ते हैं तो बहुत सारे हिस्ट्री इसके अंदर छिपी हुई है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर छिपी हुई है, और इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। बाइबल में सब कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर सब कुछ लिखा जाता तो पुस्तकें संसार में न समाती। जो मेरे और आपके लिए खास वचन है उसने दिए हैं, लेकिन उसके पीछे आसपास में क्या कुछ हो रहा है, परमेश्वर ने लोगों को खड़ा करा कि वो खोजबीन करें और अच्छी रीति से लिटरेचर साहित्य को तैयार करें। इसीलिए कॉमेंट्री आई है, इसीलिए बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, प्रभु ने खड़ा करा ताकि वो अध्ययन कर करके मेरे और आप तक पहुंचाए। और मेरे प्रियो, हम इसमें सार्थक को देखते हैं तो क्या कह रहा है, मैं लोहे के राजदंड का शासन करे वो करेगा, जैसे कुमार बर्तन टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं वैसे ही मैंने भी अपने पिता के अधिकार को पाया है, मैं उसे भोर का तारा प्रदान करूंगा। कितना सुंदर है, भोर का तारा टाइटल प्रभु यीशु मसीह के लिए भी है, दानियेल में हम पाते हैं। वो कह रहा है मैं किसको जो जय पाए, अगर मैं और आप एक जयवंत जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु मुझे और आपको ये इनाम देगा। परमेश्वर मेरे और आपको ने को एक रेस में, एक दौड़ में उसने शामिल किया है, और धावक जो जीतता है उसको इनाम मिलता है, धावक जो जीतता है वो उसको इनाम मिलता है। और मेरे प्रियो, ये हमें देखना है कि हम किस प्रकार से मसीह की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये कलीसिया थियोतरी की कलीसिया, हमें नहीं मालूम उसके बारे में कि उसमें पास्टर कौन था, पर यह मालूम है कि लिदिया के विश्वास के द्वारा वहां पर सुसमाचार फैला था, और उसके द्वारा ये कलीसिया बाद में स्थापित हुई थी। और उसके साथ साथ ये कलीसिया इस रीति से, ज्यादा बड़ी कलीसिया नहीं थी, ज्यादा बड़ा जगह भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से इस कलीसिया को पहचाना देखा है, और वो उस समय जो 7 कलीसिया एशिया माइनर में थी उनको देख रहा है, और उनको एक पत्र पहुंचा करके हर कलीसिया को चेता रहा है। और वो कलीसियाओं का जो चित्रण है वो आज हम देख रहे हैं, तब और अब, और उन कालों में बटा हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, कलीसिया की स्थापना से पहले के बाद, जब तक प्रभु दोबारा नहीं आएंगे, रैप्चर नहीं होगा, ये पूरा 7 कलीसिया उन 7 कालों में विभाजित है। और हर कलीसिया में हम उन बातों को देखते चले आ रहे हैं, जैसे हमने विशेष कहा कोई ना कोई बात, विशेष बात देखते कि किससे सतावनी सही, किसने अपने दिन तक रहा, किसने पाप को उजागर करा, किसने पाप से संघर्ष करा, या कौन सा पाप उनके बीच में आया, किस प्रकार से असफलता आई, और इसलिए ताकि मैं और आप संभाले जा सके। वो कलीसिया मेरे और आपके लिए आज के लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है, ताकि इन कलीसियाओं के द्वारा मेरा जीवन, आपका जीवन और अधिक आत्मिकता में आगे बढ़े और हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु सहायता करें कि हम सच में सत्य कलीसिया के लिए के साथ प्रभु हमारे कार्य को देख सके, हमारे धैर्य को देख सके, हमारे विश्वास को देखे, लेकिन किसी प्रकार से हमारे जीवन में इजाबेल का पाप का कोई समझौता ना होने पर हमें सावधान रहना, हमें प्रार्थना करनी है, हमें संघर्ष करना है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, और उससे अलग रह के प्रभु में आगे बढ़ना है, ताकि हम जय पाएंगे। जब जय पाएंगे तो परमेश्वर के हाथों से प्रभु हमें इनाम भी देगा। ये सुंदर बात है, आइए हम प्रार्थना।